बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। और कबल इसके कि हम आपको वेबसाइट और ईमेल का एड्रेस बताएं, आपकी खिदमत में ईद गदीर खुम की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे बहरीन की इनकलाबी तहरीक के बारे में, तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, खित्ते में इस्लामी बेदारी की लहर आने के साथ ही बहरीन के मज़लूम अवाम ने भी अपने बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक़ की बाजियाबी के लिए तहरीक शुरू की। फरवरी 2011 में बहरीन के अवाम ने सियासी इस्लाहात के लिए मुजाहरे शुरू किए। मनामा का पर्ल स्क्वायर बहरीनी अवाम के इज्तिमा और मुजाहरों का मरकज था। बहरीन के आले खलीफा हुकूमत ने अवाम के मुतालबात पर तवज्जो देने के बजाय उनकी सरकूबी के लिए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत खलीज फ़ारस के कई अरब मुल्कों की अफवाज बुला ली, जिन्होंने बहरीन के अवाम की वहशियाना सरकूबी शुरू की। इनमें सऊदी फौजी आगे आगे रहे, जिसके बाद बहरीन के अवाम की तहरीक, जो सियासी इस्लाहात के मुतालबे के लिए शुरू हुई थी, तहरीक आज़ादी में तब्दील हो गई। दुनिया ने बहरीन के अवाम को नज़रअंदाज किया। आलमी इदारों ने न बहरीन के अवाम के जमहूरी मुतालबात की हमायत की और न ही उनकी सरकूबी के लिए बैरूनी अफवाज के आने का कोई नोटिस लिया, जिससे फ़ायदा उठा के मुल्की और गैर मुल्की फौजियों ने अवाम की इनकलाबी तहरीक को कुचलने के लिए इंतहाई वहशियाना तरीके अपनाए। पर्ल स्क्वायर को मिसमार कर दिया गया, मुजाहरीन पर फायरिंग और जहरीली आंसू गैस का आज़ादाना इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। 100 से जायद बेगुनाह अवाम को शहीद और हज़ारों को ज़ख्मी किया गया। मुल्क की जेलें हुर्रियत पसंदों से भरने लगी। यूनिवर्सिटी असातिज़ा, इंसानी हकूक के कारकुन, सिविल सोसाइटी के अराकीन, शोबे सेहत से वाबस्ता अफराद, हत्ता नर्सों और डॉक्टरों को भी जख्मियों की मरहम पट्टी करने की पादाश में गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया और आलमी बरादरी के कानों पर जूं तक न रेंगी। लेकिन बहरीन के अवाम ने तमाम तर सख्तियों और आलमी बरादरी की बेइतनाई के बावजूद अपनी तहरीक जारी रखी। इसी के साथ आले खलीफा और आले सऊद के फौजियों की वहशियाना कार्रवाइयाँ भी जारी रहीं, बल्कि रोज़ बरोज़ शदीद तर होती गईं। गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर बहरीनी और सऊदी फौजियों के हमलों में कम से कम 2 बहरीनी नौजवान शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। मंगल को एक 17 साल बहरीनी नौजवान को गोली मार के शहीद कर दिया गया और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। बर्बरियत की इंतहा यह है कि शहीद के जनाजे पर भी हमला किया। जनाजे में शरीक लोगों पर बुध के रोज़ फायरिंग और जहरीली आंसू गैस की शेलिंग की गई। लेकिन बहरीन के अवाम के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने कामयाबी से हमकनार होने, यानी बादशाहत के खात्मे और जमहूरियत के क़याम तक अपनी तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि हालिया दिनों में बहरीन में अवाम के मुजाहरों में शिद्दत आने के असबाब क्या हैं, एक दूसरे मुल्क के फौजी आके अपने जायज़ और बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक़ का मुतालबा करने वाले अवाम की सरकूबी में मसरूफ़ हैं, इस पर इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के दिफा के दावेदार इदारों और हुकूमतें खामोश क्यों हैं, वजह क्या है, बहरीन के अवाम का कसूर क्या है कि उन्हें दुनिया ने ज़बानी हिमायत का भी मुस्तहक नहीं समझा है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज इस्लामाबाद स्टूडियो में आने की दावत दी गई है पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार डॉक्टर तनवीर हुसैन को। हमारे दिल्ली स्टूडियो से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार डॉक्टर कमर आगा और हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार मोहम्मद अहमद काजमी को टेलीफोन लाइन के जरिए आज के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
बहरीन के अवाम की इंतहाई शुजाना तहरीक जारी है और ये मजलूम कौम जमहूरी हकूक की लड़ाई में आए दिन कुर्बानियां पेश कर रही है। ताज़ा तरीन कुर्बानी एक इनकलाबी नौजवान की है जिसे बहरीनी सिक्योरिटी अहलकारों ने शहीद कर दिया। बुध के रोज बहरीनी अवाम ने अली खलील सब्बाग नामी नौजवान की मगरबी बहरीन के बनी जमरा शहर में तशिय जनाजा की, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तशिय जनाजा का ये जुलूस मुजाहरे में तब्दील हो गया और अवाम ने शाही हुकूमत की मजम्मत में नारे लगाए। मुजाहरीन ने शाही हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया और शहीदों के खून का इंतकाम लेने के अज़्म का इरादा किया। बहरीन में शहीदों की तादाद 139 हो चुकी है, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं और हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है। मुजाहरीन ने अक्वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो फौरी मुदाखलत करके अवाम के खिलाफ शाही हुकूमत के मजालिम और मुजरिमाना इकदामात की तहकीकात करवाए। जुलूस जनाजा से शहीद सब्बाग के वालिद ने खिताब किया और इनकलाबी तहरीक को जारी रखने के अज़्म का ऐलान किया। इस दौरान सिक्योरिटी अहलकारों ने मुजाहरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। याद रहे कि मंगल की शाम बहरीन के शुमाल मशरिकी इलाके बनी जमरा में आले खलीफा और आले सऊद के फौजियों के हमले में 17 साल नौजवान अली खलील सब्बाग शहीद हो गया था। इस वाक़े के बाद बहरीन के अवाम ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए और आले खलीफा और आले सऊद की बर्बरियत की मजम्मत की। इस बहरीनी नौजवान की शहादत के बाद सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जमीयत अलविफाक इस्लामी ने कहा कि बनी जमरा इलाके की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस जमात ने अपने बयान में कहा है कि सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले रखा है और इस इलाके के बाशिंदों पर बुरी तरह तशद्दुद किया जा रहा है। बहरीन में इंसानी हकूक के मरकज के एक सीनियर अहदेदार यूसुफ अल मुहाफजा ने भी कहा है कि सिक्योरिटी अहलकार बनी जमरा में रात के वक्त लोगों के घरों पर हमले करते हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके को जाने वाले बेशतर रास्तों को बंद कर दिया गया है और फौजी हेलीकॉप्टर मुसलसल इस इलाके की फजा पर परवाज कर रहे हैं। ऐसी हालत में है कि पूरे बहरीन में जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद करने वालों की वसी पैमाने पर गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। आले खलीफा हुकूमत ने बड़ी तादाद में बहरीनी शहरियों को मुजाहरों में शिरकत करने के जुर्म में लंबी लंबी मुद्दत की सजाएं सुनाई हैं, जबकि बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जो किसी भी मुकदमे का सामना किए बगैर जेलों में यूं ही बंद हैं। बहरीन की एक अदालत ने अभी मंगल को 6 बहरीनी शहरियों को जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद करने के जुर्म में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान बहरीन की कौमी पार्टियों ने जमीयत अल विफाक मिल्ली इस्लामी के रहनुमा खलील अल मरजूक के खिलाफ मुजवजा मुकदमे को गैर कानूनी करार दिया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और इनकलाबी गुरोहों ने ऐलान किया है कि जमीयत अल विफाक मिल्ली इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल खलील अल मरजूक के खिलाफ आइंदा चंद दिनों में मुकदमे की जो कार्रवाई शुरू होने जा रही है वो गैर कानूनी है और इसका मकसद मुल्क में सियासी असलाहत और आज़ादी इजहार राय के हक में उठने वाली आवाज़ को दबाना है। बहरीन की शाही हुकूमत अवाम की इनकलाबी तहरीक को कुचलने के लिए हर सतह पर और हर शोबे में बर्बरियत अख्तियार कर रही है, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा अरसे से जारी तहरीक न सिर्फ ये के कमजोर नहीं हुई बल्कि इसकी शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। बहरीन की शाही हुकूमत ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि हालात उसके काबू में हैं, लेकिन हकीकत अमर यह है कि अरबाब इख्तदार पर खौफ तारी है।
जहाँ नाज़रीन, बहरीन में आवाम की इनकलाबी तहरीक आले खलीफा हुकूमत की तमाम तर वहशियाना कार्रवाइयों के बावजूद जारी है और आवाम ने ऐलान किया है कि उनकी तहरीक अपने मंतिकी अंजाम यानी शाही हुकूमत के खात्मे और जमहूरियत के क़याम तक जारी रहेगी। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। तनवीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब। बहरीन में आवाम की सरकूबी इन दिनों शदीद तर हो गई है, मौजूदा सूरत हाल पर तज्जिया क्या है आपका?
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पहले तो ये इत्मीनान बख्श सूरत हाल है कि 2 साल का बल्कि 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, बहरीन के अवाम तमाम तर साम्राज्य साजिशों के बावजूद अपनी जद्दोजहद और अपने मौक़ पर कायम हैं और डटे हुए हैं और उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब किसी कौम के अफराद अपनी ज़िंदगी का नजराना अपने हकूक़ की आज़ादी अपने बुनियादी हकूक़ के तहफ़ के लिए देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तहरीक को दबाया जा सकता है। और हुकूमतें जब भी तशद्दुद की राह अख्तियार करती हैं तो ये उनके खोखलेपन की अलामत होती है और वो खौफज़दगी की अलामत होती है कि वो उन नहते और पुरमन आवाम के ख़िलाफ़ जो है वाहिशाना कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं। बेशतर ममालिक में जहाँ अमरीत रही है वहाँ जब भी आवाम ने अपने हकूक़ की बात की तो वहाँ के जो डिक्टेटर्स हैं वो हमेशा बुनियादी उनके हकूक़ को सलब करते हैं, उनके इकट्ठे आने के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, उनके मुजाहरों के हवाले से मुख्तलिफ कवानीन बनाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए तमाम हरबे किए जाते हैं। जिस तरह के दीगर जहाँ पर मार्शल लॉ घूमते रहे उसी तरह आज हम देखते हैं कि बहरीन के अवाम के लिए भी उसी तरह के कानूनी शिकंजे बनाए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को अपने हकूक़ की जद्दोजहद से रोका जा सके। लेकिन जब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उनका रास्ता रोका नहीं जा सकता, वो एक सिलसिला चल निकलता है और इंसान अपनी जो कुर्बानियाँ हैं अपने नौजवान कुर्बानियाँ कभी रायगां नहीं जाने दी जाती। सूरत हाल इस हवाले से अब मैं पुरामीद इस हवाले से भी हूँ कि जो मशरक़ वस्ती में एक तब्दीली आई है कि शाम पर हमला जो मुतवक्को था हालात ने करवट बदली और वो एक अमरीकी और सऊदी साजिश जो नाकाम हुई उसके नतीजे में एक उम्मीद पैदा की जा सकती है कि अब वो सऊदी अरब जो एक मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर अपने आप को मशरक़ वस्ती में एक इस अंदाज से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो उसे शिकस्त हुई है और अब लगता ये है कि उसकी जो नाराज़गी अमरीका के साथ है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईरान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ भी जो एक थोड़ा सा अपने हकूक़ अपने मौक़ के मुताबिक जो है एक जो सूरत हाल सामने आई है उसके नतीजे में लगता यह है कि ये जो तहरीक है इसको एक मोमेंटम मिलेगा और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा और वो जो वहाँ पे इन आवाम को क्रश करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं ये मुझे लगता है आखिरी कोशिशें होंगी और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहरीन के आवाम को फतह होगी क्योंकि वो आप हक पर हैं और अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें जिसका यकीन दहानी सब इस्लाम में भी मौजूद है और आलमी जो अक़वामे मुत्तहिदा का चार्टर उसमें भी है और इंसानी हकूक़ के हवाले से बहसियत इंसान उनके बुनियादी हकूक़ हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करेगा।
जी तनवीर हुसैन साहब, बहरीन में एक हफ्ते के अंदर दो इनकलाबी नौजवानों को शहीद कर दिया गया और उनके जनाजे पर फायरिंग की गई, जनाजे में शरीक लोगों पर हमला किया गया, उन पर जहरीले आंसू गैस के गोले दागे गए। कौन सा कानून और कौन सा अखलाकी उसूल इसकी इजाज़त देता है काफरीन और मुशरकीन भी अपने बदतरीन दुश्मन के जनाजे का एहतराम करते हैं? जब दुश्मन का जनाजा उठ जाता है तो फिर उस पर कोई हमला नहीं करता है, ये तो ये कौन से मुसलमान हैं, कौन सा इस्लाम और कौन सा उसूल पेश कर रही है?
पहली बात यह है कि जहाँ भी इस तरह के बादशाह आते हैं, जो इस वक्त वहाँ के बादशाह हैं, वो उन्होंने अपने वालिद के साथ क्या किया आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब वो यूरोप के दौरे पे थे तो उनको इक्तदार से अलग कर दिया गया था। इन लोगों के नज़दीक जो है इस्लाम तो एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और दूसरी बात यह है कि जब इस तरह का डिक्टेटर या इस तरह के जो बादशाह होते हैं तो यहाँ जब ये अपने इक्तदार के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इंसानों का कत्लेआम कोई मामूली बात नहीं, आप देख सकते हैं इससे पहले भी ये होता रहा है कि जब भी आमरों के ख़िलाफ़ आवाम उठे तो आमरों ने पूरी कोशिश की आवाम को कुचलने की, तो बिल्कुल उसी तरह बहरीन में भी हो रहा है। लेकिन उससे एक बात आप जहन में रखिएगा कि इससे ये सूरत हाल ये एक्सपोज होते हैं, इनका चेहरा जो है हालात की वजह से दुनिया के सामने आता है। आज आप देख रहे हैं कि जिस सऊदी अरब के बारे में लोग बात नहीं करते थे, हम पाकिस्तान में भी हमारे चैनल्स जो हैं उनकी इस सारी सूरत हाल जो शाम के बारे में उनका मौक़ था उसकी बड़ी पुरजोर उन्होंने मजम्मत की और सामने उनका असल चेहरा बेनकाब हुआ है और लोगों को पता चला है कि ये जो बादशाह होते हैं, जो शहनशाह होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता। इस नाम तो इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का, लेकिन दरअसल वो अपने इक्तदार के तहफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे बहरीन में भी हो रहा है, एक डिक्टेटर है, उस डिक्टेटर ने इसी तरह की हरकतें करनी है, चाहे जनाजा, और जो जिंदों को मार सकता है वो जनाजे के ऊपर भी बाकी लोगों पे फायरिंग करवा सकते हैं। और वो वहाँ पे तो फौज इस तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है जिनकी सोच में तासुब मौजूद हो, इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को भर्ती करके लिया जाता है ताकि उनके कहने पे गोली चलाएं। अगर बहरीन के अपने अवाम होंगे तो यकीनन वो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए ये किराए के फौजी और किराए के पुलिस मैन और किराए के कातिल मंगवाए जाते हैं ताकि नहते अवाम को निशाना बनाया जा सके। और ये उन हुक्मरानों की सोच और को बेनकाब करने का खुद ही एक वो बंदोबस्त कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार डॉक्टर कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर आगा साहब, बहरीन की इनकलाबी तहरीक आज अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है। इन दिनों बहरीन में आले खलीफा और आले सऊद के फ़ौजियों की वहशियाना कार्रवाइयाँ शदीद तर हो गई हैं। एक हफ्ते के अंदर दो नौजवान शहीद हुए, और जबकि सूरत हाल यह है कि अब तक जितनी भी बहरीन से रिपोर्टें मिल रही हैं और तस्वीरी रिपोर्टें आ रही हैं, बहरीन के अवाम के हाथ में सिर्फ अपने मुल्क का कौमी परचम होता है। उनके मुजाहरे पूरी तरह से पुरअमन हैं, कहीं से भी किसी भी जगह पर मुजाहिरीन की जानिब से तशद्दुद की कोई ख़बर नहीं है। इसके बावजूद न सिर्फ ये कि मुजाहिरीन पर हमला किया जाता है और उनको ज़ख्मी और शहीद किया जाता है, बल्कि शहीदों के जनाजे पर भी हमला किया जाता है और फायरिंग की जाती है, जहरीली आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। सूरत हाल जो बहरीन की है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से वहशियाना अंदाज में सरकूबी का मुजाहरा करके आले खलीफा हुकूमत अपने हदफ में कामयाब हो जाएगी?
अब पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि वो बहुत दिनों तक इस तरह की हरकतें कर सकती हैं और अपने उनका जो भी मौकफ है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये सब उस खित्ते में, ख़ास तौर से ये पर्शियन गल्फ का जो खित्ता है, यहाँ की हुकूमतें, ज़्यादातर हुकूमतें जो हैं वो इसी तरह की हुकूमत हैं। यहाँ पे बे इंतहा सख्त किस्म के कवानीन उन्होंने लागू कर रखे हैं, और ये जितनी भी स्टेट्स हैं ये मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं है, बल्कि ये इसी वजह से ये आम जनता की, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या बहरीन के रूलर्स हों या दूसरे अगल बगल के कई एक ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर ये रूलर, ये अपने मफाद के लिए काम करते हैं, जनता के मफाद के लिए नहीं करते। और ख़ासतौर से बहरीन में तो हुकूमत जो है ये तो बेइंतहा ख़तरनाक किस्म की है, और इतनी रिप्रेसिव रिजीम बहुत कम देखी जाती हैं कि जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वहाँ पर उसको सप्रेस कर रही है, बहुत स्मॉल माइनॉरिटी की मदद से अपनी हुकूमत चल रही। दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा, बहरीन की जो हुकूमत है ये वीक डिपेंडेंट स्टेट कहलाती है, जिसका के सीधा रिश्ता जो है इसके पास अपनी जो सिक्योरिटी है उसके उसकी हिफाजत के लिए वो अमेरिका से मदद लेती है, और इंटरनल सिक्योरिटी की वहाँ पे फ़ौज बहुत स्ट्रांग नहीं होती, फ़ौज तो अमेरिकन होती है जो उनको बाहर से जो ख़तरा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की अफवाज बनाई गई है, जो कि वहाँ के आम मज़लूम लोगों पे, जो कि किसी एक अमन और शांतिपूर्वक, जिसे हम लोग यहाँ हिंदी में कहते हैं, उस तरह की स्ट्रगल कर रही है उसको सप्रेस करने के लिए, उसमें तरीके किस्म किस्म के इसने इसराइल से और दूसरे ममालिकों से इसने टॉर्चर के मेथड अपनाए में हैं, सीख के आए हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दबाने की कोशिश करते हैं। जो भी आमदनी होती है मुल्क की, जो रेवेन्यू होते हैं, उसका कुछ पता किसी को नहीं होता, कितनी उनकी आमदनी हुई, कहाँ गया वो पैसा, किस मद में खर्चा हुआ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल खुले या नहीं खुले, आम जनता को उससे कितना फ़ायदा हुआ, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता। वो उस अपनी आमदनी का एक हिस्सा निकाल के दे दिया जाता है चैरिटी की तरह आम जनता के लिए। तो ये हुकूमत है, तेल वहाँ पे बेहद है, ये भी सही तरीके से नहीं मालूम कि कितना तेल के का है के ज़खीरे हैं उनके पास। अमेरिकन जो फौजें हैं वहाँ पे, सेंट्रल कमांड और ख़ासतौर से फिफ्थ फ्लीट, उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे बना हुआ है, आम जनता उसके ख़िलाफ़ है, तब भी वहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वहीं से तमाम उनकी जो लिसनिंग पोस्ट है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी है पूरे उस खत्ते में, वो कंट्रोल करते हैं, और इस तरीके से पूरे खत्ते के ऊपर अमेरिकन्स वहाँ से ही जो उनकी जो भी उनकी नीतियाँ होती हैं उसको वहाँ से चलाने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ यही नहीं बल्कि सुना तो यहाँ तक गया कि टॉर्चर चैम्बर्स तक उन्हीं ने बना रखे। ऐसे हालात के अंदर खलीफा साहब एक नोशनल उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमेरिका से ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन इसलिए नहीं मिल पाएगी कि खुद जो उनको उनके उनके उनकी पुश्त पे जो है बड़ी ताकत जिसको अमेरिका कहते हैं, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है, और उसको इन फौजियों को वहाँ पे मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पे, और उनकी जिस तरीके से इकनॉमी नीचे होती चली जा रही है, और उनको इसी वजह से वहाँ से जल्दी ही विड्रॉ करना पड़ेगा उस खत्ते से, इसीलिए उन्हीं ने ईरान से बातचीत करनी शुरू की है, वरना और कोई दूसरा मुझे मकसद नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जिस बगल की जितनी हुकूमतें हैं अगर हम देखें वो भी इस तकरीबन इसी किस्म की हैं, और इनके साथ सब मिली भी हैं, कुछ एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ भी हैं, और ये एक दूसरे को ऑपरेट करते हैं, जिसके चलते हुए इनके यहाँ आपने देखा होगा कि बगल से सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक से भी फौजें आईं, वो भी इसी तरह के की ट्रेनिंग यहाँ पे उनको दबाने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ जो मुहिम चल, ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, जो ये वापस जाके जो बहरीन में हो रहा है, फिर ये अपने मुल्कों में जो वहाँ के लोग जब वहाँ के लोग जब डिमांड करेंगे कि सियासी रिफॉर्म आने चाहिए या कुछ, तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट वो अपने यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया है, और जिसके अंदर सारे देशों की, बगल के देशों की अफवाज जो आ चुकी हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं, लोगों को दबा रही हैं, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि इस तरह से दबा के किसी कौम को या किसी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बहुत दिनों तक नहीं रखा जाता। इसके उसूल बहुत, ये नेचर के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ है, ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। ये ज़रूर है कि इनके पास इस वक्त ये बहुत ताकतवर हैं, और उनको उसके उसका उसका बहुत गुरूर है, और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये अगर सोच रहे हैं कि इसको दबा ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ी उनकी कमज़ोरी होगी। इसराइल भी इसी तरह की बात सोच रहा था, लेकिन आज तक फिलिस्तीन को नहीं दबा पाया, उनकी भी तहरीक इसी तरह चल रही है और कोई नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ बहरीन की तहरीक तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इतनी अच्छी स्ट्रगल इस मॉडर्न पीरियड में ईरान के रेवोल्यूशन के बाद अगर कहीं दिखाई देती है तो वो बहरीन में है। बिल्कुल आम जनता जो है बिल्कुल उसी मॉडल पे उन्हीं ने अपनी तहरीक बनाई है, आम जनता जो है वो बिल्कुल पीसफुल है, किसी किस्म का उसके पास जैसा कि आपने बताया एक झंडा तो परचम तो ज़रूर है उसके हाथ में, और कुछ कोई असलहा नहीं होता, और वो अपने पॉलिटिकल राइट्स या ह्यूमन राइट्स के लिए डिमांड कर रही है, और डिमांड कर रही है कि वहाँ से इस हुकूमत का खात्मा हो ताकि वहाँ पर डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी आजकल जो है वो यूनाइटेड नेशंस के तहत और जितने भी ये जो अपने को सिविलाइज्ड हुकूमतें कहते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं कोई डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है तो उसकी मदद करें, लेकिन बहरीन में हमने ऐसा उसके बिल्कुल बरक्स देखा, बजाय ये कि उन मज़लूम लोगों की मदद करने के लिए जो डेमोक्रेसी के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि उनके उनको जो हुकूमत दबा रही है उसकी मदद की जा रही है। जो गोलियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी मग़रिब ममालिक से आई है, जो आंसू गैस वहाँ पर यूज़ की जा रही है वो भी उनकी भी सप्लाई उन्हीं देशों से हो रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के भी ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो ह्यूमन राइट चार्टर है उसके भी ख़िलाफ़ है, और बेसिकली ये है कि ये हर सिविलाइज्ड जो सोसाइटीज़ हैं उसकी उसके भी ये खिलाफ वर्जी करता है। मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पे, बैन अलाक्वामी लेवल पे इनके लिए मोबिलाइजेशन करना, उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर देशों में जो खबरें आती हैं वो मगरबी देशों की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे आती हैं और उनके पास सही खबर नहीं मिल पाती। और दूसरी बात यह है कि न तो कोई प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग हो रही है बाहर के मुल्कों में के जाके, और न ही इनके लिए कोई बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन पाया है, सपोर्ट नेटवर्क जो इंटरनेशनल होना चाहिए। मैं समझता हूँ ईरान इस वक्त उसका नॉन अलाइन मूवमेंट का सरबराह है, उसको वहाँ पे एक अगर नॉन अलाइन इनिशिएटिव लिया जाए या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और वो एक आदमी अफ्रीका से और एक मुल्क एशिया से और एक लैटिन अमेरिका से, एटलीस्ट 3-4-5 मुल्कों का एक ग्रुप बनना चाहिए जो इसको देखे और यूनाइटेड नेशंस में और ग्लोबल लेवल पे जाके कंपेन करे। इसलिए कि बहरीन के ये लोग तो नहीं जा सकते बाहर, लेकिन उनकी मदद के लिए इस तरह से किया जा सकता है। दूसरी लेवल पे मैं ये भी कहूँगा कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो हैं उनका भी, जो पूरी दुनिया में हैं और ज़्यादातर बहुत से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहरीन की इस जो तहरीक है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि उनकी तादाद इतनी नहीं है, न तो उनके पास इस तरह से ऑर्गेनाइज हो पाए, ना उनके पास प्रॉपर खबरें मिल पाती हैं। तो इसका एक, मैं समझता हूँ कि एक मीडियम बनना चाहिए और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भी सामने आना चाहिए। ये मुमकिन है एक कोई इस तरह की अगर कोई कॉन्फ्रेंस की जाए लेबनान में, जहाँ पे इस तरह की वूमन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, फिलिस्तीन को लेके भी कई बार हो चुकी है, मैं खुद गया हूँ। उसके अलावा इसी तरह मैं समझता हूँ बहरीन पे भी सब जगह के लोग बुलाए जाएँ जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, यूरोप और अमेरिका से भी बुलाना चाहिए, और उसके अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका इनके सपोर्ट बेस है वहाँ पे बताया जाए, फिर ये लोग अपने मुल्कों में जाके काम करें। तो एक बहुत बड़ी तहरीक बिल्डअप करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये स्ट्रगल जो है ये एक लंबी स्ट्रगल है। ये सोच लेना कि खलीफा कल चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ गलती होगी, जिससे कि ये लोग अभी, इनका गुरूर है, इनके पास पैसे हैं, अमेरिकन सपोर्ट है, वेस्टर्न मगरबी देशों की सपोर्ट है, तो ये कुछ दिन तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये जीत पाएंगे। अगर ये एक ढंग से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनका मूवमेंट चलाया जाए तो इनको बताना होगा कि यही नहीं बल्कि इस पूरे खत्ते में क्या हालात हैं और किस तरीके से इनको दबाया जा रहा है, इन मजलूमों को, और इनके लिए जो भी मदद की जा सकती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर किस्म की मदद मुहैया करनी चाहिए, मैं समझता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबता बरकरार हुआ हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार मोहम्मद अहमद काजमी साहब से। काजमी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी काजमी साहब, बहरीन में फरवरी 2011 से जब से आवाम की तहरीक शुरू हुई है तकरीबन 140 अफराद शहीद हुए हैं, हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया है। 140 अफराद की शहादत यूँ अगर देखा जाए तो शायद कम नज़र आए, लेकिन बहरीन की आबादी को अगर मद्देनज़र रखा जाए और बहरीन और इस बात को अगर पेश नज़र रखा जाए कि बहरीन के आवाम की तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, अब तक आवाम ने जितने भी मुजाहरे किए हैं और जो मुजाहरे करते हैं उन मुजाहरों में शरीक लोगों के हाथों में या अपने मुल्क का कौमी परचम होता है या शहदा की तस्वीर होती हैं या आले खलीफा हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखे हुए नारे होते हैं, इन बातों को अगर मद्देनज़र रखा जाए कि आवाम की तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, तो ये जो तकरीबन 140 अफराद की शहादत है ये वहशतनाक नज़र आएगी। और अब सूरत हाल ये है कि जो लोग जेलों में बंद हैं नुमाइशी अदालतों में उन पर मुकदमा चला के तुलानी कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। इनकलाबी क़ुव्वतों और आवाम की सरकूबी के इस तरीक़े के बारे में आपका तज़िया क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ, जिस तेज़ी से इन हुकूमत की अदालतों की तरफ से हुकूमत के खिलाफ या ये कहिए अपने हकूक के हक में तहरीक चलाने वालों के खिलाफ जो तूलानी कैद की सजाएं दी जा रही हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत ही गैर मामूली हैं। और इसमें खास बात देखने की यह है कि जो ममालिक अपने आप को इंसानी हकूक के अलम्बरदार कहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के अलम्बरदार कहते हैं, अपने आप को इंसानी हकूक के अलम्बरदार कहते हैं, वो सब इस पर खामोश हैं। लेकिन मुझे इस वक्त एक वाकया ये याद आता है कि अप्रैल 2013 में इसी साल जो यूनाइटेड नेशन के जो टॉर्चर इन्वेस्टिगेटर जुआन मेंडेज ने कहा था, उस वक्त जब बहरेन की हुकूमत ने उनके बहरेन के सफर पर पाबंदी लगा दी थी, उन्होंने बहुत ही खुलकर के ये कहा था कि वो इंसानी हकूक की पामाली के वाकयात को बाहर के मुल्कों के सामने पेश नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने उन पर पाबंदी लगाई है। लेकिन मसलन जान की मसलन बान की मून की तरफ से कोई ऐसा सख्त बयान नहीं आया यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे के रोकने के बावजूद। इसमें ये खुली तौर पर ये एक तरह से अमेरिका की और उनके जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से यूनाइटेड नेशन पर दबाव और उनके इशारों पर काम करने के नतीजे में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने नुमाइंदे के खिलाफ बहरेन हुकूमत के इस फैसले के पर भी कोई बड़ा एहतजाज सख्त एहतजाज नहीं किया। तो ये जिस तरह से इन नुमाइशी अदालतों में, जैसा कि आपने कहा, ये हुकूमत के इशारों पर कोशिश ये की जा रही है कि ये किसी तरह से अवामी इनकलाब, जो अक्सरियत जिन लोगों की है उनका इनकलाब किसी तरह से नाकाम हो जाए। लेकिन मैं इस सब के पीछे जो ये महसूस कर रहा हूँ कि ये इनकलाब तो रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से अमरीका शाम के बारे में अपने मौकिफ में तब्दीली की है, जिस तरह से वो ईरान के बारे में भी अब ताल्लुकात वापस बहाल करना चाहता है, उसको एक ना एक दिन बहरेन के बारे में भी ऐसा फैसला करना होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत लंबे अरसे तक बहरेन में कशीदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इस आले खलीफा हुकूमत को बहरहाल अमेरिका की जो सपोर्ट है इसमें कमी आएगी, मेरा अपना समझना ये है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तनवीर हुसैन साहब, इन दिनों अगर बहरीन पर नज़र रखी जाए तो बहरीन की जो नुमाइशी अदालतें हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई हैं और रोज़ाना 10 से 15 अफराद को 15 साल, 20 साल और उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए जी, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जहाँ भी आमराना हुकूमतें होती हैं, बादशाहत होती है, तो वो तमाम वसाइल जो हैं इस्तेमाल करती है आवाम को दबाने के लिए। जैसा कि पहले कवानीन बनाए गए बहुत सारे, उनकी जो मार्शल लॉ भी लगाया गया वहाँ पे, उनके मुजाहरों पर पाबंदी लगाई गई। अब जब देखते हैं कि लोग मुजाहरों से मना नहीं होते, वो अपने हक के लिए रोड्स पर आते हैं, पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल से फिर अगला जो कदम होता है इन हुकूमतों का, वो पुलिस के ज़रिए तशद्दुद करते हैं, फायरिंग करवाते हैं, आंसू गैस फेंकी जाती है कि लोग वापस चले जाएं, घबराएं, डरें, खौफ। और जब वो मरहला भी लोग उस मरहले पर भी हुकूमतें कामयाब नहीं होती, तो फिर इस तरह की समरी मिलिट्री कोर्ट की तर्ज पर या इस तरह की जो नुमाइशी अदालतें हैं, फिर इनको इस्तेमाल में लाया जाता है और सख्त सजाएं देकर लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। ये हुकूमत आमराना हुकूमतों का एक और हरबा होता है, जब उसके आलात उसके काबू से बाहर होते हैं तो फिर हुकूमतें इस तरह की हरकतें करती हैं और आम शहरियों को लंबी लंबी सजाएं देती हैं। जिस तरह के बहरीन की अदालत में तकरीबन 50 लोगों को सजाएं दी गई, जिसमें से गालिबन 30 को 5 साल की और चार को 10 साल की और बाकी 16 को कुछ इस तरह से 15 साल की सज़ाएं सुनाई गई, और कुछ लोग तो अदालतों में मौजूद भी नहीं थे यहाँ पे, उनकी अदम मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात बनाए गए और उनके यकतरफा तौर पे उनको सज़ाएं सुनाई गई। और फिर नई जो इंटरप्रटेशन टेररिज्म की वो भी जैसी भी निकाली गई कि अगर किसी शहरी का किसी भी दूसरे मुल्क खसूसी तौर पे ईरान के साथ उसकी जो इम्प्लाइडली कहा जा सकता है कि अगर किसी रियासत के साथ ताल्लुकात होंगे तो ये भी टेररिज्म में आएगा। तो ये ऐसे सख्त कवानीन का जो मुतारफ़ करवाने का मकसद ये होता है कि लोग डरें और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरों से बाज आएँ और उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म में मुजाहरे ना करें, कोई ग्रुपिंग ना करें, किसी हवाले से भी काम ना करें। तो ये अदालती जो भी एक तशद्दुद है, ये अदालती दहशतगर्दी है जिसमें अदालत का एक कानून, एक प्रोसीजर होता है, एक ट्रायल का एक पूरा तरीक़ाकार होता है और उसको नज़रअंदाज करते हुए सियासी बुनियादों पे, इंतकामी बुनियादों पे लोगों को उनके जुर्म से बहुत ज़्यादा सज़ाएं दी जाती हैं जिसको सख्त सज़ाओं का नाम दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये तो एहतजाज जो है इन सब पूरी दुनिया में एक जमहूरी हुकूमतों में एक बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है कि इंसान अपने हकूक़ के लिए, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के लिए एक पुरमन तरीके से सड़क पे आए, रोड्स पे आए या जो भी तरीका कार उस मुल्क का उसके अंदर रहते हुए एहतजाज करे। बहरीन के इनकलाब के एहतजाज में तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये नज़र आती है कि वहाँ नौजवानों के साथ ख़वातीन शामिल हैं, बापर्दा ख़वातीन हैं, बच्चे शामिल हैं। जब ख़वातीन और बच्चे किसी एहतजाज में शामिल होते हैं तो वहाँ मुजाहिरीन जो हैं वो पुरतशद्दुद नहीं होते, वो कभी पुरतशद्दुद नहीं होते। पुरतशद्दुद वहाँ होते हैं जहाँ पे इस तरह के नहीं हो। लेकिन मैं वो देख रहा हूँ तस्वीर भी जो आप टेलीविज़न पे भी कि ख़वातीन, बच्चे, पूरा ख़ानदान जो है वो अपने हकूक़ के लिए निकल के आए, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं है और पुरअमन तरीके से, एक महज़ब तरीके से
जी
ये लोग अपना हकूक़ की बात करें। और हमारे दूसरे जो फाजल जो हमारे तजिया कार से, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इन इनके जो अक्सरियत की वहाँ आबादी है, 70 से 80% लोग हैं वहाँ बहरीनी, उनके हकूक़ और उनकी आज़ादी का, उनकी जद्दोजहद का और उनके कोई मुतालबात ऐसे नहीं है जो दूसरे मुल्कों में नहीं है। सारी दुनिया में यही हकूक़ होते हैं, आइनी हुकूमत होनी चाहिए, इंतखाबात का हक मिलना चाहिए, जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, समाजी इंसाफ मिलना चाहिए, मुआशी इंसाफ मिलना चाहिए, आवाम का इकतदार आवाम के पास होना चाहिए, हुकूमत आवाम को पता हो कि मुल्क के वसाइल कितने हैं, ऑयल कितना है, मुल्क का पैसा कहाँ खर्च होता है, मुल्क का ऑडिट का पता चलना नहीं। तो ये सारी बुनियाद पूरी दुनिया में इस चीज़ का एहसास किया जाता है, लेकिन ये कोई अनोखे नहीं है कि बहरीन के आवाम ने कोई ऐसे मुतालबात कर दिए कि उन पर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। ये आलमी ज़मीर के लिए और पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाली तंजीमों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, उन्हें यह अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। बहरीन की अदालतों के बारे में आप क्या कहेंगे, जहां इन दिनों बहुत तेज़ी के साथ मुकदमात चलाए जा रहे हैं आले खलीफा हुकूमत के मुखालिफिन पर, और बहुत बड़ी तादाद में नर्सों और डॉक्टरों को भी सिर्फ इस पादाश में तुलानी मुद्दत की कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं कि उन्होंने ज़ख्मियों का इलाज मुआलजा उनकी मरहम पट्टी क्यों की। 3 मिनट का टाइम है हमारे पास, 3 मिनट का वक्त है।
जहाँ तक सवाल है उनकी अदालतों का, तो ये जितनी भी अदालतें हैं उनमें अंग्रेजी का एक लफ्ज है कंगारू कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। इस तरह के कोर्ट जो होते हैं कभी मेडिवल पीरियड वगैरह में भी नहीं थे, उससे पहले कहीं एग्जिस्ट करते थे, जिनका कोई जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई आइन नहीं है जिस पे मुनसर हों, सिर्फ वो एक छोटी सी एक फैमिली जो है अल खलीफा फैमिली, उसको बचाने के लिए जो भी लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको सज़ा दे रहा है। ये तो कोई ये पता नहीं कौन सा आईन है, ये कौन से कोर्ट हैं जिसमें इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं। किसी भी सिविलाइज मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जहाँ तक सवाल ये है कि वो सोचते हैं इस तरह के जो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं, ख़ासतौर से जिस तरह की हम देख रहे हैं बहरीन में हैं, ये हुकूमतें सोचती हैं कि हम दबा के लोगों को, अक्सरियत को दबा लेंगे। और हम शाह ऑफ ईरान भी कुछ इसी तरह की बातें सोचते थे और उन्हीं ने भी बड़ी कोशिश की, आज देख लीजिए उनके ख़ानदान का भी नहीं पता चल रहा है। इसी तरह के एक बहुत ही जल्दी आप देखिएगा सुनिएगा कि अल खलीफा के साथ कभी वही हशर होगा जो उनका हुआ था। ये बहुत करप्ट इनफिशेंट इनको हम लोग कहते हैं रिजीम है जिसका वक्त पूरा हो चुका है, जिस रिजीम के लिए जिन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आ जाएं और एक मजॉरिटी उसके लिए एक ऐसी हुकूमत की बात करे जो कि एक प्रोग्रेसिव है, जो कि एक अच्छी हुकूमत बनाने की बात करता। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तनवीर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया। लेकिन एक चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, वो बात यह है कि इस पूरे खित्ते का में जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप देखिएगा कि अफ़गानिस्तान और फिर उसके बाद बहरीन, सीरिया, इन सब जगहों पे एक बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इसलिए कि अमेरिकन पॉलिसी जो है उस पूरे खित्ते की वो बिल्कुल फेल हो गई है और इस बात का उसको एहसास हो गया है। और इसी वजह से, इन्हीं वजूहात की वजह से उसने बातचीत भी ईरान से करने की शुरू, उसने कोई मोहब्बत नहीं ईरान की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कि अपने को वहाँ से बचा के निकलने की कोशिश में है और वो जानता है कि बगैर ईरान के वो नहीं हो सकता। और वो वहाँ पर इस वजह से वेस्टर्न, ये मगरबी देश जो हैं वो बातचीत भी शुरू कर रहे हैं और एक ये मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत छोटी सी एक कड़ी है उस पूरे खित्ते की, उससे बड़े बड़े मुल्क वहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं आम जनताओं के,
जी शुक्रिया जनाब,
के आवाम के खिलाफ। तो ये एक शुरुआत हुई है, इसका आप जल्दी ही मुझे लगता है कि रिजल्ट भी आएगा।
शुक्रिया जनाब, शुक्रिया कमर आगा साहब, शुक्रिया काजमी साहब,
शुरुआत हुई है उसके बाद आगे बढ़ेगी
जी। शुक्रिया जनाब कमर आगा साहब। काजमी साहब आप लाइन पर हैं जनाब?
जी जी मैं लाइन पर।
जनाब शाम में बागियों ने कीमियाई असलहे इस्तेमाल किए और अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी ने हुकूमत के कीमियाई असलहे तलब करने का अमल शुरू कर दिया। अलबत्ता इसमें शाम की हुकूमत का तआवुन भी है और हुकूमत ने खुद इसके लिए रजाकाराना तौर पर तैयारी का ऐलान किया था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बहरीन में आले खलीफा और आले सऊद के फौजी अवाम की सरकूबी में जो जहरीली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो ममनू है, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? डेढ़ मिनट का वक्त है हमारे पास।
ये जो आले खलीफा की तरफ से ममनू हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी मिसाल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में हलबचा में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। उस वक्त भी अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक जो उस वक्त इराक के साथ में थे वो सब खामोश थे। इसी तरह से अब बहरीन में जो मजालिम हो रहे हैं उस पर भी खामोश हैं, लेकिन इनको सभी को, अमेरिका हो या इसराइल हो या जो खित्ते के अरब ममालिक हैं, वो सिर्फ एक तरफ से अपने तरीके से देखना चाहते हैं इस दुनिया को। इसी वजह से ये मजालिम का सिलसिला जारी है और मैं समझता हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जैसे हमारे दोस्त कमर आगा साहब ने कहा कि बहुत जल्दी तब्दीलियां हमारे सामने आएंगी जिसे हम देखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, कमर आगा साहब और तनवीर हुसैन साहब, तीनों हजरात के हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन बहरीन के सिलसिले में आलमी बरादरी, अमरीका, यूरोप और अक्वामे मुत्तहिदा के दोहरे मेयार की एक बड़ी मिसाल ये भी है कि शाम में मुख्तलिफ मुल्कों के 1,00,000 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं। इसका एतराफ़ अमरीका और यूरोपी हुकूमतों को भी है। इसके बावजूद हुकूमत शाम की मुखालफत की जाती है और सदर बशार असद के इकतदार से हटने का मुतालबा किया जा रहा है और बहरीन में एक डिक्टेटर आमिर और शाही हुकूमत की हिमायत की जा रही है। ये दोहरा मेयार है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।